ఓం ఓం ఓం. ఆదిగురు సర్వజ్ఞ భగవాన్ శంకరాచార్య ద్వారా విరచిత్ వేదాంత డిండిమా ఇస్ ప్రకరణ లఘు గ్రంథ కే ఆధార్ పర్ ప్రాతకాలీన ప్రవచన మే వేదాంత విచార్ చల్ రహా హై. అభ్యాస్ కే లియే శ్లోక నంబర్ 39వాం హోగా 39. పురుషార్థ త్రయావిష్టా పురుషః పశవో ధ్రువం మోక్ష్యార్థీ పురుషశ్రేష్ఠః ఇతి వేదాంత డిండిమః ఘటకుట్యాదికం సర్వం మృత్తికా మాత్రమేవ చ తథా బ్రహ్మ జగత్ సర్వం ఇతి వేదాంత డిండిమా. సన్నిహత్య త్రయం హిత్వా ద్వయం విత్వాఖిలాతిగం ఏకం బుద్ధ్వా స్నుతే మోక్షం ఇతి వేదాంత డిండిమః. విత్వా షట్ పంచ విత్వా విత్వా షట్ పంచ విత్వాథ విత్వాథ చతురస్త్రికం ద్వయం విత్వా శ్రయేద్ ఏకం ఇతి వేదాంత డిండిమః. దేహో నాహం అహం దేహీ దేహ సాక్షీతి నిశ్చయా జన్మ మృత్యు ప్రహీణో అసౌ ఇతి వేదాంత డిండిమః. ప్రాణో నాహం అహం దేవా ప్రాణ సాక్షీతి నిశ్చయాత్ చుత్ పిపాసోపశాంతి స్యాత్ ఇతి వేదాంత డిండిమః. ప్రసంగ చల్ రహా హై. శాస్త్ర మే మనుష్య కే మహత్వ కో బతానే కే లియే బార్ బార్ చార్ ప్రకార కే పురుషార్థో కీ చర్చా హుయీ హై కర్తే హై. పురుషార్థ శబ్ద కా అర్థ హోతా హై పురుష కే ద్వారా ప్రాప్త కర్నే యోగ్య चार वस्तु हैं, इसीलिए उनको पुरुषार्थ कहते हैं. यहां पुरुष शब्द का अर्थ स्त्री भी है वो पुरुष शब्द का अर्थ केवल मेल नहीं फीमेल भी है मैन नहीं वोमेन भी है। सामान्य रूढ़ी शब्द पुरुष शब्द का अर्थ तो पुरुष मेल है पुरुष के द्वारा प्राप्त करने योग्य वस्तु उसका नाम हो गया पुरुषार्थ। चार वस्तु है बताया है पहला वस्तु धर्म है मनुष्य को चाहिए कि हर हालत में धर्म को प्राप्त कर ले धर्म न छोड़े। दूसरा है अर्थ आया तो खाली हाथ लेकिन जब तक जिएगा तब तक हाथ भरा रहे जाएगा भी खाली आया था खाली हाथ और जाएगा भी खाली हाथ लेकिन जब तक जिंदा रहे तब तक हाथ भरा रहे मुट्ठी भरी रहनी चाहिए खाली नहीं होनी चाहिए उसको कहते हैं अर्थ पुरुषार्थ। एक कोई लाकर तुम्हारे हाथ में दे दे और उससे तुम्हारी हाथ भरी रहे यह अर्थ पुरुषार्थ नहीं है वो अर्थ पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा पुरुषार्थ है काम काम का अर्थ होता है कि तुम जब तक जियो संसार के पदार्थों को तुम भोगो तुम भोक्ता बनकर आए हो कर्ता बनकर आए हो तो भोक्ता बनकर जियो अर्थ पुरुषार्थ का अर्थ हो गया कर्ता बनकर जियो काम पुरुषार्थ का अर्थ हुआ भोक्ता बनकर जियो। भुंजी था भोग हो भाई ऐसा नहीं करना कि खूब कमाते रहे और ढेर करके रखते रहे जाते समय न स्वयं खा पाया न किसी को दिया ऐसा नहीं है कम से कम तुम भोगो तो सही। चौथा पुरुषार्थ बताया मोक्ष इन चार वस्तुओं को चार पुरुषार्थ माना है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। यहां इन्हीं चार पुरुषार्थ के बारे में संकेत करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं पहले के जो तीन पुरुषार्थ हैं ये तीनों पुरुषार्थ मनुष्य को पशु बनाने की पुरुषार्थ है। समझे कि नहीं पहले के जो तीन पुरुषार्थ हैं वो क्या है मनुष्यों को पशु बनाने के पुरुषार्थ हैं। धर्म भी मनुष्यों को पशु बनाता है। आप लोगों को अभी थोड़ा आश्चर्य लगेगा ये शब्द का अर्थ सुनते लेकिन जब हम व्याख्या करेंगे तब स्पष्ट होगा। सामान्य सुनते समय तो लग रहा है धर्म मनुष्य को पशु कैसे बनाता है। धर्म पशु को मनुष्य नहीं बनाता है, उल्टा धर्म मनुष्य को क्या बनाता है, पशु बनाता है। इसी तरह अर्थ भी मनुष्यों को पशु ही बनाता है। आज तक अर्थ से कोई पशु मनुष्य हुआ हो ऐसा कोई रिकॉर्ड है? है अमेरिका के तरफ, यूरोप के तरफ, अमेरिका के तरफ लोग शौकीन होते हैं और घर में कुत्ता बिल्ली कुछ न कुछ जानवर पालते रहते हैं। उधर इंसान को पालने की कोई चिंता नहीं करता है, कोई सोचता नहीं है। अब वो संस्कार यहां आ चुका है, वो कल्चर पूर्व में भी आ चुका है। मां बाप को घर से निकालकर कुत्ता बिल्ली पालना शुरू करने का जो संस्कार है, धर्म है, उसको तो क्या धर्म कहें भाई, शौकीन संस्कृति। संस्कृति अलग है, धर्म अलग चीज है। ये पश्चिम की जो संस्कृति है और हमारे यहां भी आ चुका है ये। बहु सास को घर से निकालकर कुत्ता पालना चाहती है, बेटा मां को घर से निकालकर कुत्ता पालना चाहता है, क्योंकि कुत्ता और बिल्ली बहू को डांटती तो नहीं है। डांटते हैं है? कुत्ता और बिल्ली भी बहू को डांटते हैं। सास की सेवा भी करो और डांट भी खाओ। कुत्ते बिल्ली की तो खाली सेवा करो, डांटना खाने की जरूरत नहीं है, उल्टा हम डांट सकते हैं उनको। नो डॉगी नो डांटते हैं, हम देखते हैं ना डॉगी जब भौं भौं करता है, नो डॉगी नो दट, उसको डांटने का मजा आता है बहू को है? वो लोग क्या करते हैं कि बिल कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी। ये बहुत आप लोगों ने देखा सुना है पेपरों में, न्यूज में, फलाने व्यक्ति ने एक कुत्ता पाल रखा था और अपनी सारी प्रॉपर्टी उस कुत्ते के नाम पर बिल कर दिया। फलाने व्यक्ति ने बिल्ली पाल रखी थी, अपनी सारी प्रॉपर्टी बिल्ली के नाम पर बिल कर दी। ये सुनने में आता है, हम सुन रहे हैं पेपरों में, न्यूज में अक्सर सुनते रहते हैं। उसने सारी प्रॉपर्टी अर्थ है ना, अर्थ पुरुषार्थ, अर्थ सारी प्रॉपर्टी कुत्ते या बिल्ली के नाम में बिल कर देने पर कुत्ता और बिल्ली इंसान हुआ कहीं देखा है? है कहीं देखा है कहीं उदाहरण? तो अर्थ पुरुषार्थ से पशु इंसान हुआ है यह तो कहीं देखा नहीं है, उल्टा अर्थ पुरुषार्थ से इंसान पशु हुआ है सर्वत्र दिखने में आता है। ये बड़ा विलक्षण बात कह रहे हैं शंकराचार्य जी। इसी प्रकार से काम पुरुषार्थ से कोई पशु इंसान हुआ हो ऐसा दिखने में नहीं आ रहा है। संसार के अच्छे से अच्छे भोगों को भोगने पर कुत्ता मनुष्य हो गया, ऐसा तो कहीं रिकॉर्ड मिला नहीं है, सुनने में तो आया नहीं, देखने में भी नहीं आया। उल्टा ज्यादा भोग में आसक्त हुआ पुरुष पशु हुआ है, ये सुनने में भी आता है देखने में भी आता है। इन तीन पुरुषार्थ में से दो पुरुषार्थ के बारे में तो आपको समझ में आ गई कि अर्थ पुरुषार्थ से इंसान पशु भी हो सकता है, काम पुरुषार्थ से इंसान पशु भी हो सकता है। ये दो पुरुषार्थों से पशु होने की बात तो आपको समझ में आ गई है, हो सकता है, हो नहीं सकता ऐसा नहीं समझना। पशु इंसान तो नहीं हो सकता, लेकिन इंसान पशु हो सकता है दो पुरुषार्थों से। शंकराचार्य जी तो और आगे बढ़कर कहते हैं धर्म पुरुषार्थ से भी इंसान पशु हो सकता है। और ये शंकराचार्य जी जो बात कह रहे हैं, हमारी मान्यता है कि इंसान को सही इंसान बनने के लिए धर्म करनी चाहिए और धर्म के माध्यम से इंसान इंसान से देवता बन सकता है। हमारी साधारण मान्यता तो यही है, सामाजिक मान्यता यही है, धार्मिक मान्यता भी यही है। धर्मरूपी पुरुषार्थ से इंसान सही इंसान होता है और धर्मरूपी पुरुषार्थ से इंसान देवता भी बन सकता है। तो ये जो बात है शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं, धर्म पुरुषार्थ भी इंसान को पशु बनाता है, ये कैसे है महाराज, ये बात समझ में नहीं आ रही है। शंकराचार्य जी ने कह दिया यहां है, ये श्लोक पढ़ लो भाई, तुम्हारे सामने रखी है प्रमाण। पुरुषार्थ त्रयाविष्टः पुरुषः पशवो ध्रुवम्। पुरुषार्थ त्रयाविष्टा पुरुषः ध्रुवम् पशवः, तीन पुरुषार्थ में ही लगा हुआ जो पुरुष है वो वास्तव में पुरुष न होकर वो पशु ही है। लवजा समझे कि नहीं, देखो उपनिषद में स्पष्ट, वेद में स्पष्ट ये मंत्र आया है कि केवल देवताओं को रिझाने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नित्य निरंतर यज्ञ यागादि जो करता है और उसी में ही लगा रहता है। समझे कि नहीं, यहां धर्म शब्द का अर्थ जब करना तब करना, ये इतना नहीं समझ लेना। धर्म शब्द का अर्थ मीमांसा, जिसको धर्म बोलता है, यज्ञ यागादि कर्म। तो वेद में बताया गया है स देवानाम पशु हो, वह देवताओं का पशु है, पशु। क्योंकि मनुष्य यज्ञ याग आदि करके देवताओं को तृप्त करता रहता है तो देवता उसको पशु की तरह ही रखते हैं, मानते हैं ये हमारे पशु हैं। देवता के दृष्टि में तुम यज्ञ यागादि कर्म करने धर्म करने वाले पशु से ज्यादा नहीं हो, क्योंकि वह दुखी होते हैं। धर्म से अज्ञान की निवृत्ति तो होगी नहीं, यह अभिप्राय है शंकराचार्य जी का कहने का। धर्म से अज्ञान की निवृत्ति होगी नहीं, धर्म से बंधन की निवृत्ति नहीं होगी। धर्म शब्द का अर्थ कर्म, मैं फिर भी कह रहा हूं, और गीता में स्पष्ट कृष्ण ने कहा है कि तुम जो कर्म कर रहे हो वह कर्म तुम्हें ही बंधन में डालती है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, इस लोक में कोई मनुष्य कर्म करता है तो उसी के किए हुए कर्मों से वह बंधन में पड़ता है। अब ये गीता के वाक्य ये कहता है कि कर्म भी बंधन का कारण है तो पशु ही बंधन में आते हैं। बंधन से बांधना किसको बांधा जाता है? पशुओं को ही तो बांधा जाता है। हाँ, बड़े बड़े घरों में कुत्ते पालते हैं लोग, तो कुत्ता इस आशय से पालते हैं कि कोई आवे तो भूखे हो, हमको पता चले, तब उसकी आदत हो जाती है, कोई भी आवे तो भूखने लग जाए। तो कभी कभी महात्माओं को भोजन के लिए निमंत्रण देते हैं घर में, तो आज महात्मा आने वाले हैं, इस कुत्ते को बांध के रखो। कुत्ते को बांधते हैं कि नहीं बोलो? घर में घूमता रहने वाला कुत्ता को भी महात्मा आते हैं ये पता चले तो बांध देते हैं। तो बंधन में किसको रखती है? पशु को बांधा जाता है, शाम को गाय भैंस को बांधा जाता है, सभी पशुओं को बांधा जाता है, पशु पालने वाले पशु को बांधते हैं। इसीलिए तुम्हारा जो कर्म है वो किसको बांधता है? तुमको ही मानता है। देवता लोग, ये शास्त्र में लिखा है कि कोई मनुष्य धर्म से, अर्थ से, काम से उपराम होकर मोक्ष मार्ग में जब प्रवृत्ति करता है तो देवता लोग विघ्न डालने आते हैं, ये अब आजाद हो जाएगा, ये बंधन से मुक्त हो जाएगा। बोले वो मुक्त होता है तो होने तो तुम्हारा क्या जाता है? वो मोक्ष मार्ग में चलकर सभी बंधनों को नष्ट करके प्राकर्म प्रविलाप्यताम चितिबलात् नाप्युत्तरे श्लिष्यताम, जब वह संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, आगामी कर्म, ज्ञान का आश्रय लेकर ये तीनों प्रकार के कर्म से मुक्त होता है तो तुम्हें क्यों चिंता, होने दो। बोले भाई इन सब कर्मों से वो मुक्त हो जाएगा तो कल से हमको रोटी पकाकर दाल भात खाने कौन देगा? बोलो है? कौन खाने देगा? क्योंकि जीवात्मा जब तक मनुष्य जब तक अज्ञानी रहेगा तभी ना वैदिक कर्म करेगा, धर्म करेगा, तो उस धर्म का संबंध देवता, देवता तृप्त होंगे, पितृ तृप्त होंगे। ये सच बात मैं तुम्हें कह देता हूं, तुम्हारे पितृ भी खुश नहीं होते हैं यदि तुम मुक्त होने लग गए तो, खुश नहीं होंगे। हाँ, मोक्ष मार्ग में तुम चलने लग गए तो तुम्हारे पितृ भी प्रसन्न नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। वो तो यही चाहेंगे कि तुम अज्ञानी बने रहो। स्वाहा और स्वधा करते रहो। स्वधा करते रहोगे तो पितृ तृप्त रहेंगे, स्वाहा करते रहोगे तो देवता तृप्त रहेंगे। और तुमने यदि ज्ञानी हो गए और स्वाहा स्वधा करना छोड़ दिया तो वो पितृ और देवता भूखों मरेंगे। तो तुम्हारे मार्ग में व्यवधान करने नहीं आएंगे वो, जब ये अवस्था है तो रुकावट करने आएंगे वो। हाँ, इसलिए कहा श्रेयांसी बहु विघ्नानी। श्रेय मार्ग, प्रिय मार्ग में कोई विघ्न नहीं है। हाँ, प्रिय मार्ग में कोई विघ्न नहीं, श्रेय मार्ग में हजार विघ्न है। हाँ, यहां तक कि बाप रिटायर हो गया, दोनों मां बाप घर छोड़कर हरिद्वार जाने की बात करें तो बहू बेटे रोकते हैं। हमको पता चला क्यों रोकते हैं, तो पता चला बाद में, क्योंकि मां बाप जब वृद्ध होंगे घर में बैठेंगे तो घर की रक्षा करते रहेंगे ना। फोकट का चौकीदार मिल गए, मिल गए कि नहीं है? दो टाइम की दो रोटी दे दो, दिन भर घर कूरते रहेंगे, घर की रक्षा करते रहेंगे, सैलरी देने की जरूरत नहीं है। और तुम लोग तो फ्लैट में रहते हो इसलिए ये समस्या नहीं रहती है घर की रक्षा करने की। फ्लैट में तो सोसाइटी चौकीदार रख लेता है और ताला लगाओ और चले जाओ। लेकिन गांव में शहरों में जहां घर है, अपना अपना घर है, वहां तो घर की रक्षा करने के लिए दिन में कोई होना चाहिए कि नहीं। यदि दोनों ही काम करने चले गए बहू बेटे तो दिन में घर की चोरी हो जाती है। तो बूढ़ा व्यक्ति वृद्ध घर में बैठे रहेंगे तो घर की रक्षा होती रहेगी दिन भर, नहीं तो ताला टूट जाता है, चोर लोग ताला तोड़ के ले जाएंगे, चोरी हो जाता है, गांव में देखने में आता है, यहीं शहर में भी फ्लैट में चोरी हो जाती है। इसीलिए हरिद्वार क्यों जाते हो महाराज, यहीं बैठे रहो हम खाने देंगे। और फोकट का देखो दो रोटी के आधार पर पूरी चौकीदारी करा रहे हैं तुम्हारे बहू बेटे, और तुम मक्खा हो रहे हो कि मस्त हो रहे हो कि हमारा बेटा हमारी सेवा करता है सेवा। पुरुषार्थ त्रयाविष्ट पुरुष पशवो ध्रुवम, ये निश्चित है कि धर्म पुरुषार्थ में ही लगा हुआ व्यक्ति वो देवताओं के दृष्टि से वह पशु है, वो बंधन में पड़ा हुआ है, कर्म से बंधा हुआ है, कर्म से मुक्त हो नहीं पाएगा वो। इसी तरह अर्थ कमाने में ही लगा हुआ व्यक्ति वो भी पशु है, मुक्त हो नहीं पाएगा बंधन से। और इसी तरह काम पुरुषार्थ में लगा हुआ व्यक्ति भी भव बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाएगा, इसलिए वह पशु है, क्योंकि ये तीन की बंधन यथावत है। इसलिए शंकराचार्य जी ने कह दिया सिर्फ ये तीन पुरुषार्थ में लगा हुआ व्यक्ति पशु है। पुरुषार्थ त्रयाविष्ट पुरुषः पशवो ध्रुवम् मोक्षार्थी पुरुष श्रेष्ठ। ये तीन की अपेक्षा चौथा पुरुषार्थ को प्राथमिकता देने वाला जो पुरुष होगा, व्यक्ति होगा, मनुष्य होगा, वह ये तीन में से श्रेष्ठ है। अन्यथा तीन तो पशु हैं, बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये चौथा पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ में लगा हुआ व्यक्ति, वह कभी न कभी, अभी नहीं तो कभी न कभी बंधन से मुक्त हो जाएगा। बंधन से मुक्त होने का एक ही पुरुषार्थ है, वह है मोक्ष पुरुषार्थ। उसमें लग जाना चाहिए, वह व्यक्ति पुरुष श्रेष्ठ है, वो पशु नहीं है, वह श्रेष्ठ पुरुष है। यह है कि वह कालांतर में वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो हमें संसार में पशु होकर रहना है कि पुरुष श्रेष्ठ होकर रहना है, बंधन से मुक्त होकर रहना है कि बंधन में ही रहना है। और यदि बंधन मुक्त होना चाहते हैं तो मोक्ष पुरुषार्थ का आश्रय लेना पड़ेगा। बंधन में रहना है तो खूब धर्म करो, खूब अर्थ कमाओ, खूब भोग भोगो, ये तो पशु का काम है। मोक्ष पुरुषार्थ का लक्षण क्या है महाराज? चालीसवें श्लोक के द्वारा बता रहे हैं। घटपुट्यादिकं सर्वं मृत्तिका मात्रमेव च तथा ब्रह्म जगत सर्वं इति वेदांत डिंडिमः। घट और कुटिया, घट कुट्यादिकम् आदिपद से सभी चीज को ले लेना, घटादि कुट्यादि। तो आप कहोगे कि नारद महाराज, कुटिया मिट्टी की हो सकती है, महल तो मिट्टी की नहीं हो सकती ना, है? कुटिया मिट्टी की हो सकती है, महल तो मिट्टी की नहीं होती है। अरे बाबा, चाहे कुटिया हो, चाहे लुटिया हो, चाहे महल हो, चाहे झोपड़ी हो, ये सब होंगे तो मिट्टी के ही। घड़ा भी मिट्टी का है, घर भी मिट्टी का है, कुल्हड़ भी मिट्टी का है, राजमहल भी मिट्टी का है। आदिपद से सारा पृथ्वी में जो कुछ भी मूर्त रूप में तुम देख रहे हो, वो सब मिट्टी है। पृथ्वी में जो मूर्त रूप से तुम देख रहे हो, ये सब मिट्टी है। तुम नाम कुछ भी दे दो, तुम जिसको कुर्सी कह रहे हो वो पृथ्वी का मूर्त वस्तु है, इसलिए पार्थिव पृथ्वी का ही मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए पार्थिव है वो। दिल्ली में एक भक्त थे भाई, बड़े विचित्र के थे वो, वेदांती थे, वेदांत में उनको काफी रुचि था, हम हमेशा बताया करते हैं। लेकिन वेदांत भी उनको इतना वेदांत की वो दूसरों को परेशान करने की वेदांत थी उनके पास। एक होता है वेदांत स्वयं को आनंद प्रदान करने वाला, और दूसरा होता है दूसरों को परेशान करने वाला। समझे कि नहीं? कभी पता चला है दूसरों को परेशान करने का वेदांत? उल्लू बनाना, दूसरों को मूर्ख बनाना, दूसरों को बोलना ही नहीं देना। उससे कहो महाराज समय हो गया खाना खाने का, चलो, तो उसको खाना खाने की इच्छा न हो तो क्या? महात्मा कहते हैं आत्मा तो खाता नहीं पीता नहीं है, और तुम कहते हो खाना खाने के लिए चलो। आत्मा कहीं खाना खाता है? आत्मा तो अभोक्ता है, उनको खाने की इच्छा नहीं है ना, इसीलिए दूसरों को उल्लू बना दिया कि नहीं है? आत्मा अभोक्ता है करके व्याख्या कर दी वेदांत की। ठीक है, वेदांत ने कहा ही आत्मा अभोक्ता है, ठीक ही कह रहा है। जब उसको भूख लगती है और खाना खाने की इच्छा होती है और कहता है, मांगता है बहू से, ए भोजन नहीं बनाया, भोजन दो, तो बहू बोलती है आत्मा तो अभोक्ता है, पिताजी आत्मा तो अभोक्ता है, अभी आपने कहा नहीं? बोले ठीक कह रही है तू, आत्मा अभोक्ता है, लेकिन प्राण तो भोक्ता है ना, प्राण है, प्राण के लिए दे ले। वो कहा ले, दूसरों को उल्लू बनाना, ये वेदांत कैसा वेदांत है? दूसरों को उल्लू बनाओ और अपना मतलब निकालो है? पति पत्नी दोनों वेदांत सुनने आते थे। पत्नी ने कहा, पति ने कहा सुबह उठते ही, अरे चाय नहीं बनाई, चाय लाओ। पत्नी ने कहा अब भी तो उठे हो, ब्रश करो, नहा लो, धो लो। ओके, बिना नहाए बिना धोए चाय पी लोगे? चलो नहा धो के आओ तब चाय पीना। क्यों नहाना है? क्योंकि महात्मा ने कहा आत्मा हमेशा शुद्ध रहता है। कि नहाने की क्या आवश्यकता है बोलो? शेर कहीं नहाता है? हम तो ब्रह्म हैं, ब्रह्म हमेशा शुद्ध रहता है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम, सुनी नहीं है तूने? तो फिर नहाने की बात करती है। उल्लू बना दिया पत्नी को। पत्नी ने कहा कि आत्मा ने ही साथ में ये भी कहा है कि आत्मा तो कुछ खाने पीने वाला नहीं, खाती नहीं पीती नहीं, तो चाय क्यों चाहिए तुम्हें? है? बोले अरे प्राण तो है ना चाय पीने के लिए। ले उल्लू, तो महात्मा तो इसी तरह उल्लू बनाया करता था, तो एक बार हमको भी इच्छा हुई कि उसको उल्लू बनाए, और को तो उल्लू बनाता ही था, हमें भी इच्छा हुई कि उसको उल्लू बनाए। उसने भोजन के लिए बुलाया घर में, हम दृष्टांत दिया करते हैं कभी कभी, तो हम चले गए उसके यहां। तो उसने कहा कि महाराज बैठिए, तो बैठक में ले गया सोफा के ऊपर, दिखाया और कहा महाराज बैठिए। तो हमने नाटक किया, सोफा में ऐसे हाथ लगाया, ऐसा देखा कि क्या तुम्हारे घर में कोई सफाई करने वाला भी नहीं है क्या? सब मिट्टी मिट्टी और मिट्टी के ऊपर बैठ कर बैठिए कहता है। मैंने इतना कहना था कि बवाल शुरू कर दिया उसने घर में, नौकरों को बहुओं को सबको डांटने लग गया, अरे तुम लोगों ने सफाई नहीं किया, आज स्वामी जी आएंगे, कहा था है? तुमने झाड़ू नहीं लगाया, झाड़ पोंछ नहीं किया, पोछा नहीं लगाया। तो वो बहुत जोर से चिल्लाया, तो नौकर भी झाड़ू लेकर पोछा लेकर दौड़ा, बहू भी झाड़ू लेकर दौड़ी, कहां है जी मिट्टी, कहां है? हम खड़े रह गए, बैठे नहीं। बोले वो स्वामी जी कह रहे हैं देखो सोफा में सब मिट्टी मिट्टी है। पाया उसने कपड़ा से पोछा लगाया, झाड़ा, सब कुछ सफाई करके गया। अब बैठिए महाराज जी, मैं आता हूं कपड़ा फिर बदल कर। तो हम फिर भी खड़े ही रह गए, बैठे नहीं। उसको उल्लू बनाना था ना, वो अंदर गए अपने कमरे में, कपड़ा कपड़ा बदल कर आया। क्यों बैठे नहीं महाराज? बोले तुम्हारे नौकर और बहू भी ऐसे ही है, देखो सफाई भी किया तो जैसे का वैसे मिट्टी है, उधर मारा उधर मारा उधर मारा, देखो मिट्टी, हाथ लगाया फिर सोफा में, देखो जो कहते हो मिट्टी। अब तो वो बहुत परेशान हो गया, खुद कपड़ा लेकर आया, बताइए कहां है मिट्टी है? मैंने कहा वो देख लो मिट्टी। उसने पूछा अब बैठिए महाराज, अब तो बैठिए। हमने कहा बेटा फिर भी मिट्टी है, तुमने मिट्टी पूछी नहीं है भाई। तब फिर हमने कहा ये अब ज्यादा परेशान हो जाएगा, इसको बता देना चाहिए। तुम ये बताओ जहां बैठने के लिए तुम कह रहे हो ये क्या है? बोले सोफा है। अरे ये सोफा कहां से बना, किससे बना, उपादान कारण क्या है? हैं? ये आकाश से बना है कि धरती से बना है? अरे मिट्टी से ही ये बना हुआ होने के कारण ये पार्थिव है कि नहीं, मिट्टी है कि नहीं? ये सोफा खुद मिट्टी का है तो मिट्टी है। क्या सुना तुमने वेदांत में? घड़ा क्या रूप है? तो बोले मिट्टी रूप है। अब सोफा क्या रूप है? रूप ही मिट्टी रूप है। महाराज क्यों हैरान किया आपने इतना देर से? बोलता है तू लोगों को हैरान करता है, आज तू हैरान हुआ है। इसलिए वेदांत कभी कभी दूसरों को परेशान करने का भी काम होता, काम में आता है। अन्यथा वेदांत तो अपने स्वांत सुखाए है। वही बात इस 40वें श्लोक से कह रहे हैं। घटकुट्यादिकं सर्वं मृत्तिका मात्रमेव च, चाहे छोटा सा घड़ा हो, चाहे छोटी सी झोपड़ी हो, चाहे वह राजमहल हो, सब मिट्टी से यानी पृथ्वी के कार्यों से, ईंट पत्थर सीमेंट रेत लोखंड ये सभी पार्थिवी तो हैं। है लोहा क्या पार्थिव नहीं है? मिट्टी नहीं है? सीमेंट क्या मिट्टी नहीं है? पत्थर क्या मिट्टी नहीं है? ईंट क्या मिट्टी नहीं है? लकड़ी क्या मिट्टी नहीं है? इन सब से बना हुआ राजमहल क्या सोने का होगा? वो भी मिट्टी है, क्योंकि सोना भी खुद मिट्टी है, पार्थिव है। सोना जलीय तो है ही नहीं, वायवीय तो है ही नहीं, तेजस तो है ही नहीं, आकाशीय तो है ही नहीं। सोना भी मिट्टी का है, पृथ्वी का कार्य है, वो भी पार्थिव है। घटकुट्यधिकं सर्वं मृत्तिका मात्रमेव च तथा ब्रह्ममय तथा ब्रह्म जगत सर्वं इति वेदांत डिंडिमा। इसी तरह ये सारा जगत ब्रह्ममय है, ब्रह्म के अतिरिक्त नहीं। ये दृष्टि जिसकी हो गई है वही उत्तम पुरुष है, अन्यथा वह पुरुष होता हुआ भी धर्म अर्थ और काम तीन प्रकार के पुरुषार्थ में लगा हुआ व्यक्ति वो पशु ही है, वह पुरुष नहीं। और आगे क्या कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।